नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार लंदन फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से देश के उद्योगपति गौतम अडानी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अडानी ग्रुप पर 32,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, पहले हमने 20,000 करोड़ की बात की थी और सवाल पूछा था कि पैसा किसका है और कहां से आया। अब पता चला है कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा गलत था, इसमें 12,000 करोड़ और जुड़ गए हैं और कुल आंकड़ा 32,000 करोड़ हो गया। राहुल गांधी ने कहा, बिजली बिल बढ़ाने के पीछे अडानी ग्रुप का हाथ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है, वो कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी की जेब में पैसा जाता है। अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में जाँच हो रही है, लेकिन भारत में अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है, वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। लोग 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें। पीएम अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने और परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के मकसद से अहम फैसला लिया। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी। ये स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। अब ये फाइल LG ऑफिस को भेज दी गई है। स्कीम 2023 के वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग में मील का पत्थर साबित होगी। इस स्कीम पर अमल से एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई कॉमर्स संस्थाओं के वाणिज्यिक बेड़े को समयबद्ध तरीके से डिजिटल पेट्रोल वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल पाएंगे। साथ ही ये जीरो गैस उत्सर्जन को बढ़ावा देने के मकसद से कारगर जरिया साबित होगा। इस तरह का स्कीम लाने के मामले में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां इस तरह की स्कीम लागू है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग से छठ पूजा त्योहार को देखते हुए 17 नवंबर को होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। सिंह ने कहा कि त्योहार के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 90 सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 और 17 नवम्बर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छठ का त्यौहार इस वर्ष 17 से 20 नवंबर तक मनाया जाना है। सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के निकट छठ पूजा का पर्व आने से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। देश में इन दिनों जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। ये बात अपना दल सोनेलाल के लिए नई कतई नहीं है। पार्टी के गठन में इसकी मांग उठती रही है। अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग दोहराई है। प्रतापगढ़ में पिता सोनेवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने जातिगत गणना की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही है। उनके पिता और पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल जनसंख्या के आधार पर संसाधनों के विभाजन के समर्थक थे। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिससे BSF के 2 जवान घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल के जवान RS पुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिजली के खंभे पर लाइट ठीक कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं, अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। BSF ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान रेंजरों ने मंगलवार सुबह करीब 8:15 बजे अरनिया सेक्टर में विक्रम चौकी पर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी। इसके बाद BSF जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की। बयान के अनुसार इस गोलीबारी में BSF के 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन के खिलाफ जारी समन पर एक विशेष अदालत ने रोक लगा दी। विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ हुसैन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने 20 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। न्यायाधीश ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और 8 नवंबर तक उनसे जवाब मांगा। उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दी जा रही दलीलों के मद्देनजर ये भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक मामले में लागू आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।